તારીખ 19/8/1994 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 102.
શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક, સાતમા અધિકાર, જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા સ્વરૂપ કૈસા હૈ યો કહેતે હૈ. ઉસમે इस अधिकार में तीन प्रकार के मिथ्या दृष्टि का स्वरूप लिया है. एक निश्चयाभासी है, एक व्यवहाराभासी है और एक दोनों का आभासी है, उभयाभासी जिसको कहते हैं. निश्चयाभासी बहुत स्थूल भूल में है, उसकी मोटी भूल है, उसका सुलझना आसान है. व्यवहाराभासी इससे ज़्यादा गलती करते हैं, उसका सुलझना मुश्किल है. और उभयाभासी है, उसकी तो बहुत सूक्ष्म भूल रहती है, उसको इस भूल को मिटाना बहुत मुश्किल है. अभी जो प्रकरण चल रहा है वो उभयाभासी का चल रहा है. पंडित जी ने स्थूल से सूक्ष्म भूल इस प्रकार का सारा प्रकरण का आयोजन किया है. देखो, वहां वह कहता है, वह मैंने कौन मिथ्या दृष्टि उभयाभासी, कि श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं. हमारी श्रद्धा निश्चय की है और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं. और हमारे जो प्रवृत्ति है शुभ भाव रूप पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि हम बराबर करते हैं. और हमारा श्रद्धान है वो तो निश्चय तत्व का हमारा श्रद्धान है. तो इसमें क्या, उसमें कौन सा अनुचित बात रही फिर? बात तो हमारी ठीक ही है, ऐसा वो कहते हैं. इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं. दोनों मैंने दोनों नहीं को, निश्चय नहीं को भी अंगीकार करते हैं और व्यवहार नहीं को भी अंगीकार करते हैं. उसका समाधान करते हैं कि सो ऐसा भी नहीं बनता, ये भी तुम्हारा एक भ्रम है. ऐसा भी बन सकता नहीं है, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है. निश्चय का श्रद्धान किया और व्यवहार का भी व्यवहार रूप श्रद्धान करना चाहिए. दोनों ज्ञान पूर्वक श्रद्धान की बात है. निश्चय नहीं, नहीं दोनों नहीं अंगीकार करने की बात है ना. तो निश्चय नहीं का विषयभूत जो तत्व है, परम तत्व है, आत्म तत्व है, उसका तो उस रूप में श्रद्धान करना. और व्यवहार नहीं का विषयभूत जो परिणाम और बाह्य क्रिया है उसको उस रूप में श्रद्धान करना. तो एक का श्रद्धान आदरणीय है, दूसरा का श्रद्धान में उसका निषेध आता है. प्रकार दोनों का अलग अलग है. यहाँ तो एक दूसरी बात कहा है कि एक ही नहीं का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है. दोनों नहीं का अपने अपने स्थान में श्रद्धान ज्ञान होना चाहिए, तथा प्रवृत्ति में नई का प्रयोजन ही नहीं है. जो बाह्य प्रवृत्ति है वो तो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, और नई तो ज्ञान की और कथन की बात है. ज्ञान नहीं और कथन नहीं, दो प्रकार के नए होते हैं. उसमें प्रवृत्ति में कोई नई का प्रयोजन नहीं होता है. प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वो तो निश्चय परिणति है. प्रवृत्ति है वो तो परिणाम है और ये द्रव्य की परिणति है. वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो तो निश्चय ने कथन करे. जीव के परिणाम को जीव का कहे निश्चय है, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे तो व्यवहार नहीं है उपचार करने से. ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नहीं बनते हैं, ऐसा अभिप्राय लेकर के जो कथन करे, प्ररूपण करे, मैंने विवेचन करे, तो उस प्रवृत्ति में दोनों नहीं बनते हैं, तो कथन की प्रवृत्ति में दोनों नहीं बराबर है। कुछ प्रवृत्ति ही तो नई रूप है ही नहीं, प्रवृत्ति तो परिणाम है, वो कोई नई रूप है ही नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। फिर तो हम क्या करें, हमने तो ऐसा माना था कि व्यवहार रूप प्रवृत्ति करना और श्रद्धा निश्चय का रखना, अब आप इसका भी ना देते हो, अब हम क्या करें। फिर कहते हैं कि निश्चय नहीं से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धा अंगीकार करना, और व्यवहार निश्चय जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धा छोड़ना, एक का आदर करना एक का निषेध करना, या व्यवहार ने जो कहता है निरूपण करता है ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, जैसे घी का घड़ा नहीं है ऐसे। यही समय सार कलश में कहा है, 173 नंबर का कलश का पंडित जी ने यहाँ आधार लिया है, समय सार में से बहुत आधार लिया है। इस प्रकरण को समझाने में सबसे ज्यादा आधार समय सार की गाथाओं और कलशों का लिया है। सर्वत्र अध्यवसानमेव अखिलम त्याजम यदुक्तम जिनैः तन्मन्य व्यवहार एव निखिलोपि अन्याश्रयस्य त्याजितः सम्यग् निश्चयम् एकमेव परमम् निष्कंपम आक्रम्य किम शुद्ध ज्ञान घने महिमने ननिजे भग्नन्ति संतोषतृतिम। अर्थ, क्योंकि सर्व ही हिंसा आदि व अहिंसा आदि अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना ऐसा जिन देवों ने कहा है। देखो, हिंसा आदि तो पाप है, लेकिन अहिंसा आदि भी छोड़ना ऐसा जिन देवों ने कहा है। देवसाय है सब, देवसाय मैंने अन्य पदार्थ के आश्रय से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणाम, चाहे हिंसा का हो चाहे अहिंसा का हो, सब ले लेना। अन्य पदार्थ में अपने स्वरूप को छोड़ करके सब ले लेना। क्योंकि सर्व ही हिंसा आदि वो अहिंसा आदि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना ऐसा जिन देवों ने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। आचार्य महाराज अपनी मान्यता को प्रसिद्ध करते हैं, जो जिनेन्द्र देव ने सभी प्रकार के पराश्रित परिणाम रूप अध्यवसाय छुड़ाया है, तो इसका मतलब है कि सर्व ही पराश्रित व्यवहार छुड़ाया है, सभी पराश्रित व्यवहार को छुड़ाया है, एक भी पराश्रित व्यवहार की सम्मति नहीं दिए। पराश्रित परिणाम ही नहीं करना, स्वाश्रित ही परिणाम करना, सीधी बात है वो। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार, तो सर्व व्यवहार छुड़ाया है, पर सर्व व्यवहार छुड़ाया है उतना ही नहीं, भगवान जो उपदेश देते हैं वो अपना उपदेश को परिपूर्णपणे अंगीकार करके देते हैं, भगवान को कोई व्यवहार होता नहीं है, वंद्य वंदक भाव नहीं है, कोई भाव है
नहीं।
भगवान पंच परमेष्ठी का नमस्कार मंत्र बोलते हैं क्या?
नहीं।
उपदेश देते उतना तो व्यवहार है कि नहीं, कि वो भी अनिच्छा पूर्वक है, इच्छा पूर्वक
नहीं
है, अपने परिणाम में वो व्यवहार नहीं है। केवल ज्ञान होने से तो नया तीत दशा होगी। क्या?
नया तीत।
केवल ज्ञान होने से, पूर्ण परमेश्वर जिनेन्द्र पद प्राप्त होने से फिर नया तीत दशा होगी। नए है वहां तक व्यवहार है, उसमें भी निश्चय ने आदरणीय है और व्यवहार निषिद्ध है। और निश्चय नहीं तभी आदरणीय होता है जब व्यवहार का निषेध आता है, तब पंचाध्यायी कर तो ऐसे ही लेते हैं कि निश्चय का, निश्चय नहीं का स्वरूप क्या है, कि व्यवहार का निषेध वही निश्चय का स्वरूप। जाओ व्यवहार का निषेध वही निश्चय का स्वरूप, वो नास्ते से निश्चय का स्वरूप लेते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है वो सर्व ही छुड़ाया है, थोड़ा नहीं सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष परम एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। आचार्य महाराज तो प्रश्न करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि जो शांत हो गए हैं, संत हैं, जो अपने स्वरूप में एक स्वरूप के आश्रय से शांत हुए हैं, वो अपना निश्चय परमात्मा स्वरूप को सम्यक प्रकार से, भले प्रकार से माने सम्यक प्रकार से अंगीकार करके, और कैसे अंगीकार करके कि निष्कंप रूप से अंगीकार करके, झिझकते नहीं उसमें, हिचकिचाट नहीं है उसमें, निष्कंप रूप से स्वरूप में आरूढ़ हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते?
जैसे व्यवहार का निषेध है वही निश्चय का आरोप है, तो अपने दोषों का निषेध वही गुण प्राप्ति की बात है।
हाँ वो तो है, व्यवहार का निषेध और जितने भी व्यवहार है वो पराश्रित परिणाम है, वो दोष रूप है। पराश्रित परिणाम सभी
दोष रूप है,
लौकिक गुण है वो पारमार्थिक दोष है, ऐसे जो लौकिक गुण है वो पारमार्थिक दोष है, जितने भी पराश्रित परिणाम है वो दोष रूप है, उसका निषेध वही निश्चय है, इस तरह से लेना। क्या कहा? संत पुरुष संतो धृतिम क्यों धारण नहीं करते, स्थिति क्यों नहीं करते? एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके, इससे बढ़िया पदार्थ जगत में कौन है? परम उत्कृष्ट है, सर्वथा उत्कृष्ट है ऐसा निज परमात्मा है, उसको निष्कंप रूप से अंगीकार करना यही संतों का धर्म है। अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में क्यों स्थिति नहीं करते? देखो स्थिर करना, स्थिति करना स्वरूप में वो महिमा के कारण से है।
महिमा?
हाँ
महिमा।
कोई ऐसा पूछे के सम्यक दर्शन, सिद्धोपयोग और स्वरूप में स्थिरता वितरागता, ये क्या चीज है? तो एक एक शब्द में तीनों को कहना है तो कि निज महिमा का परिणाम है वो, अपना अनंत महिमावंत जो आत्म तत्व है उसका अत्यंत 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 महिमा आने से वो तीन प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन आदि दूसरा कुछ नहीं है, अपने स्वरूप के महिमा के परिणाम स्वरूप ही है और दूसरा कुछ नहीं है। और वो महिमा की शुरुआत स्वरूप निश्चय के काल में होती है, जब स्वरूप का निश्चय यथार्थ रूप में होता है तब स्वरूप का मूल्यांकन आता है कि स्वरूप कितना महिमावंत है। जितना अनंत महिमावंत है उतना ही महिमा प्रतिभाषित होता है। निश्चय के काल में सो क्या होता है कि स्वरूप निश्चय खुद ही स्वयं ही स्वरूप प्रतिभास रूप है। स्वरूप निश्चय क्या है कि स्वरूप का प्रतिभास, सीधा प्रतिभास। देखो स्वरूप निश्चय होता है विकल्प के काल में, सब विकल्प दशा में। गुरुदेव कहते थे कि विकल्प के काल में विकल्प के आड़ लिए बिना, विकल्प के आड़ बिना ज्ञान सीधा अपने आप में, अपने में कुछ अंश में झुक करके अपना स्वरूप का प्रतिभास करता है। तो जितना महिमावंत स्वरूप है उतना प्रतिभास आता है उसमें, और एकदम पर्याय में स्वरूप महिमा उमड़ करके आती है, जोर से आती है, उतनी उछलता है, उतना उछलता है स्वरूप महिमा के परिणाम उतना उछलता है। तो ये आगे बढ़ करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, स्वरूप आचरण चारित्र में परिणमन हो जाता है। तो आचार्य महाराज ने भी यहाँ यही शब्द रखा है कि संत लोगों को तो सर्व प्रकार का पराश्रित परिणाम छोड़ करके, क्या
छोड़ करके
उपदेश देना के नहीं देना संतों को, हाँ कि उनको उपदेश देने का होता है लेकिन उसका निषेध के साथ होता है। गणधर देव को 12 अंग, 11 अंग और 14 पूर्व 12 अंग की रचना का विकल्प होता है, उनका भी उनको निषेध आता है। और समोसरण में सभी धर्मात्मा गणधर देव से लेकर के जितने भी हो, महा मुनिराज होते हैं, दूसरे आचार्य होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि तो बहुत होते हैं, सबों को भगवान का उपदेश सुनने का विकल्प आता है और सबों को उसका निषेध भी आता है। उपदेश सुनने के लिए तो इकट्ठे हुए समोसरण में,
निषेध आता है
लेकिन निषेध के साथ है। निषेध को कोई नहीं समझे और नकल करने लग जाए क्या होगा,
नकल करे तो काम नहीं होगा,
उल्टा चला जाएगा, क्या
उल्टा,
उल्टा चला जाएगा।
ऐसे निषेध आने के परमात्मा की प्रति ऐसा निषेध आता है श्रवण आदि का, ऐसे में परमात्मा के प्रति
अविवेक, अनादर, ऐसा जो भी कहना हो सो भगवान कहते हैं कि यही सच्चा हमारा आदर है, क्या हमारे उपदेश में क्या बात आती है कि तुम तुम्हारे स्वरूप में लीन हो जाओ, पर वो अपने स्वरूप में लीन हुए निषेध करके व्यवहार का। तो भगवान ने जाना कि मेरा उपदेश का प्रतिपालन किया उसने, क्या किया
प्रतिपालन किया,
मेरा उपदेश का आदर किया तो मेरा आदर हो गया, और मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि वो मेरे सामने देख करके सुनते रहे, ऐसे मुझे तो अपेक्षा
नहीं है
क्योंकि मैं भी उनके सामने नहीं देखता हूँ कौन कौन सुनने को बैठे हैं, कितने बैठे हैं, सतेंद्र वंदित है भगवान तो है, सौ इंद्रो समोसरण में आकर के वंदन करते हैं, भगवान नहीं देखते हैं, इंद्र आते हैं, इंद्राणियां आती है, सब कुछ असंख्य देव आते हैं, कितने आते हैं
असंख्य देव
आते हैं, कोई नहीं किसी के सामने नहीं देखते, वो ध्यानस्थ अवस्था में ऐसे रहते हैं, आँख खुलते नहीं है, आँख पूरी नासिकाग्र दृष्टि रहती है और पलक भी लगाते नहीं है, जैसे प्रतिमा स्थिर है वैसे भगवान भी जिन बिंबवत, सजीवन मूर्ति जिन बिंब है वो, कितने कैसे हैं सजीवन मूर्ति है वो, आँख की पलक भी नहीं लगती है कि खुल जाए, उनके पलक भी लगते और वाणी छूटती हो तो होठ नहीं हिलते, मुंह नहीं खुलता, कंठ नहीं हिलता, जीवा नहीं हिलती, कुछ नहीं होता। उस वातावरण में ओमकार नाद घूमता है और कुछ नहीं। जाओ तो भगवान को भी अपेक्षा तो है नहीं, वो कैसे कहेंगे कि तुमने हमारा अनादर किया। उनको तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, वितराग है, पूर्ण वितराग है। अगर अपेक्षा होती तो वितराग उसको कह सकते नहीं है, मान सकते नहीं है वितराग। हमारे तरफ की भी यही हमारा फर्ज है कि जो भगवान की आज्ञा है उसको हम अंगीकार करें। भगवान की आज्ञा को अंगीकार करें वही हमारे तरफ की बात भी वही है, दूसरी बात है नहीं। तो गुरुदेव के जमाने में एक प्रश्न चला था, कोई लोग सोनगढ़ आ रहे थे, ट्रेन में कोई चर्चा चली तो कुछ वो दूसरे भी कोई संप्रदाय वाले थे, बोला कहाँ जा रहे हो? कि सोनगढ़ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? कि स्वामी जी का उपदेश सुनने को जा रहे हैं। तो कि आपके स्वामी जी तो निमित्त का निषेध करते हैं, तो आप तो सुनने को जाए वो निमित्त नहीं है क्या? है तो निमित्त। तो कि फिर क्यों जाते हो? वो तो ना देते हैं। तो वही सुनने के लिए जाते हैं क्या? वो ना सुनने के लिए जाते हैं, निमित्त का निषेध सुनने के लिए हम लोग जाते हैं। निमित्त के पास भी निमित्त का निषेध सुनने के लिए जाते हैं, ठीक? ऐसी बात है, थोड़ी अटपटी लगे। कोई नए नए आए थे, हमारी उपस्थिति की बात है। दोपहर का प्रवचन चला, बहुत व्यवहार का निषेध गुरुदेव ने किया प्रवचन में। वो तो करते थे, कभी कभी बहुत जोर से भी करते थे। फिर प्रवचन पूरा हो गया और गुरुदेव पधारे जिन मंदिर में भक्ति के लिए, हमेशा भक्ति होती थी, तो भक्ति के आधा पौना घंटा। वो नया नया आदमी था कि ये बात कैसी है, प्रवचन में तो ना देते थे पर फिर पधार गए वहाँ और बैठ गए भक्ति में, ये बात कैसी? ये बात हमारी समझ में तो नहीं आती है। ये प्रवचन में ना देवे और बाहर में तो दिखते हैं, फिर भक्ति में क्या करें? कि भक्ति क्या, वो प्रवचन ही व्यवहार था और भक्ति भी व्यवहार है। तो प्रवचन देते वक्त प्रवचन का भी निषेध और भक्ति के वक्त भक्ति का भी निषेध है। यही सच्ची भक्ति है क्या?
यही सच्ची भक्ति है।
सुगाने जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है कि जो व्यवहार भक्ति है वो संसार भक्ति का आसक्ति का निषेध करती है क्या? देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष के प्रति जो समर्पण है वो संसार की आसक्ति और संसार के कुटुंब परिवार के प्रति जो भक्ति है उसका निषेध उसमें आ जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा वो उधर करता है। और निश्चय भक्ति व्यवहार भक्ति का निषेध करती है। ऐसे भक्ति का स्टेज है।
निषेध नहीं करे तो अनुमोदन का दोष लग जाता
है। आ गई, अगर निषेध नहीं आता है तो अनुमोदना हो ही गई और आई गई, नहीं आया ऐसा नहीं है। वो गुप्त अनुमोदना है। कैसी है
गुप्त अनुमोदना?
वो सरलता के प्रकरण में लिया है, गुप्त अनुमोदना। आत्म जागृति में आया नहीं इसको,
वो कंटिन्यू रह जाती
है। हाँ, वो चालू रहता है, वो परिणाम चालू रहता है। तो उसका आश्रव भी चालू रहता है, उसका बंध भी चालू रहता है। ऐसा है,
ऐसे के वचन परमात्मा को जिस को निषेध आता है सामने वाले की भूख कटी हो जाती है।
हाँ, वो गुरुदेव कहते थे वो भी हीरा की रज है, ये हीरा की रज है, वो गहने के में काम में नहीं आती है, वो कोई अलंकार में तो उसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी कैरेट में बिकती है, तोला में नहीं बिकती है, ग्राम में नहीं बिकती है, वो भी कैरेट में बिकती है, वो उसका भी उपयोग होता है, वो हीरा को हीरा बनाने में इसका उपयोग होता है, वो सराण पर लगाते हैं, जहाँ घिसते हैं ना तो हीरा हीरा को काटता है, घिसने में मदद करती है वो वो भी कैरेट में बिकती है। जिसके शुभोपयोग रूप मलिन परिणाम, उस निमित्त से निकले हुए वचन उसके निमित्त से भी दूसरे का कल्याण हो जाए तो इसकी परिणति का तो कहना ही क्या।
हाँ,
फिर से कि जिस शुद्धात्म परिणति है वो तो एक पवित्र दशा है, लेकिन उस काल में शुद्धात्म परिणति के सहचर जो राग होता है उपदेश का, उस राग के निमित्त से उपदेश का वचन व्यवहार चलता है, उस वचन व्यवहार के निमित्त से दूसरे का कल्याण हो जाता है, तो उसकी परिणति देखने वाले को क्या कहे उसको निमित्त बनाने इसको बनाने से क्या होता है। तो निमित्त तो ऐसे ही बनता है कि जिसको कल्याण होता है वो वचन को छोड़ करके, राग को छोड़ करके सीधी परिणति को पकड़ता है, तब उसको कल्याण होता है। तो बीच वाली दोनों चीज को अनुसंधान में लिया जाता है निमित्त के कारण से, क्योंकि मूल में तो सीधा अनुसंधान इंटरलिंक है, आत्मा के आत्मा के साथ होती है, एक आत्मा का कल्याण होता है उसका अनुसंधान दूसरे आत्मा के परिणति के साथ होता है, जो पवित्र परिणति उसके साथ होता है, लेकिन सीधा नहीं हो सकता, राग और वाणी के माध्यम से होता है। तो वाणी को भी पूजनीय क्या क्या कहा है, इसके वाणी को भी पूजनीय कहते हैं। हाँ, परिणाम तो हुए देखा था सुनते बोलते हुए सुना सुना नहीं था, परिणमते हुए देख लिया था, ऐसा हुआ था जब आत्मकल्याण हो गया। अपन पूछते हैं कि क्या गए, सोनगढ़ गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया, गुरुदेव का प्रवचन सुना, बस सुन के चले आए, कहाँ सुन के चले आए, बहुत अच्छा ठीक है भाई, सुन सुन के चले आना, सुन सुन के चले आना, नहीं परिणमते देखो गुरुदेव को, सिर्फ सुन के मत चले आना, परिणमते हुए
देखो
तुम परिणम, ऐसा परिणमन हो जाएगा, देखने से होता है, सुनने में वस्तु परोक्ष है और देखने में वस्तु प्रत्यक्ष है, ऐसी बात है,
योग्यता की बात है।
हाँ, योग्यता तो हाँ, योग्यता बहुत तैयार हो गई थी और आना हुआ था, वो कहाँ जानते थे, अजमेर में थे तो वो जानते नहीं थे कि कोई सम्यक दृष्टि संत पुरुष इधर सोनगढ़ में विराजते हैं, वो जानते नहीं थे, उनको कोई पता नहीं था, और बहुत उलझन में आ गए थे कि क्या करें, रास्ता नहीं मिलता है, उतने आए कि अब जीना मुश्किल हो गया था, ऐसी परिस्थिति असह्य परिस्थिति में आए, तो उस उलझन की पुकार कुदरत ने सुनी, आत्मधर्म भेज दिया, कुदरत ने भेज दिया, किसी को पता नहीं था कि सोगानिया रहते तो उसको आत्मधर्म भेजे, ऐसा कोई पता नहीं था कि कोई सुपात्र जीव है इसलिए भेजे, वैसे ही जैसे हम आत्म जागृति भेजते हैं वैसे भेज देते हैं, पता नहीं है कौन कैसे है, न देखा है न कोई मालूम है, पता कहाँ से मिल जाता है, कहीं से न कहीं से, और भेज देते हैं। ये प्रचार का एक प्रकार होता है,
दर्शन का जो आर्टिकल है उसमें
जिन दर्शन का जो आर्टिकल आपको समझ में आएगा यही बात आ रही
है, परिणाम से मैंने देखा। अब तो वो आएगा ना अपना वो क्रम वाला है ना, है जिनेंद्र दर्शन वाला आएगा, फिर वो क्रम वाला बाद में आएगा। अच्छा तो 3 महीने का खुराक है, परिणमन देखना है, कैसे परिणमन है। अंतर्मुखता सुनाई नहीं जाती क्या? अंतर्मुखता सुनाई नहीं जाती, सुनने से उसका पता नहीं चलता है, लेकिन दिखाई जाती है। अंतर्मुखता दिखाई जाती है और निरवशेष अंतर्मुख, परिपूर्ण अंतर्मुख जिनेंद्र देव का स्वरूप है। तो जिनेश्वर का स्वरूप है वो परिपूर्ण अंतर्मुख है, और आत्मा का स्वभाव भी सर्वथा अंतर्मुख रहना, वही उसका स्वभाव है, परिपूर्ण अंतर्मुखी तत्व है, अंतर तत्व है ना। सम्यक दर्शन में निमित्त होता है, मूर्ति है बिल्कुल। और अब तो प्राण प्रतिष्ठा किया है उसमें, अभी उसको मूर्ति के रूप में नहीं देख करके साक्षात जिनेंद्र के रूप में देखते हैं। हाँ, पंच कल्याण प्रतिष्ठा को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, वंजन शलाका करते हैं ना, प्राण का आरोप करते हैं। कोई फर्क नहीं है, जैसा जिनेंद्र है वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। वे वाणी वहाँ छूटते है वातावरण में, इधर वाणी का योग नहीं है, बाकी पूरा का पूरा जिनेंद्र का रूप है, कोई फर्क
नहीं है।
तो क्या से निकला? निज महिमा में से चला वो बात, कि शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में क्यों स्थिर नहीं हो जाते संत पुरुष, बाहर क्यों निकलते हैं? बाहर इसका मतलब कि बाहर निकलना चाहिए नहीं, और निकलते तो उनको निषेध आता है, स्वयं को तो निषेध आ ही जाता है। अनुभव प्रकाश में लिया है दीपचंद जी ने कि अपना परमात्म तत्व से कौन अधिक है, ऐसा कौन सा पदार्थ जगत में अधिक है कि इसको छोड़ करके तुम दूसरा का ध्यान करते हो, कि इसका ध्यान छोड़ करके दूसरे का ध्यान करने योग्य कोई पदार्थ जगत में है ही नहीं। प्रश्न उठाया है, ऐसा कौन सा पदार्थ तुमको मालूम पड़ता है कि उसका ध्यान, ये परमात्मा तत्व का ध्यान छोड़ करके दूसरा का ध्यान करते हो तो करने लायक कोई है
नहीं।
ऐसा महापदार्थ है
निज महिमा का विशेषण है शुद्ध ज्ञान गंध रूप
है,
जो निज महिमा होता है निज महिमा में, तो शुद्ध ज्ञान गंध रूप निज महिमा है।
हाँ, शुद्ध ज्ञान गंध रूप निज महिमा है।
ज्ञान घन यानी कि क्या?
ज्ञान घन घनिष्ठ ज्ञान का परिणमन है, जो स्वरूप महिमा का परिणमन है वो कोई राग का परिणमन नहीं है। हम लोग महिमा भक्ति उसको राग समझते हैं,
वो नहीं है।
ना देते हैं आचार्य महाराज,
शुद्ध
ज्ञान घने महिमनी, शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा है अपना, महिमा ही शुद्ध ज्ञान घन रूप है, सिर्फ ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान का घन रूप और शुद्ध ज्ञान का घन रूप है, ऐसा निज में राग रूप नहीं है, राग का परिणाम नहीं है। महिमा को भक्ति को राग का परिणाम मत लेना, ये निश्चय भक्ति है, वो निश्चय महिमा है, वो शुद्ध ज्ञान खंड रूप वितराग भाव रूप है, और राग भाव रूप नहीं है किंतु वितराग भाव रूप है, ऐसा है। देखो अपने उस स्वरूप निश्चय की बात चली है, सभी गुण के पर्याय हो गई है, उसमें श्रद्धा भी आता है, ज्ञान भी आता है, चारित्र भी आता है, पुरुषार्थ भी आता है, चारों गुण आता है, मुख्य चारों का एक साथ परिणाम होकर के महिमा उमड़ती है, इसलिए परिणमन चारों का होता है उसमें। अगर राग रूप होता तो एक तर्क करें अपन कि हुआ तो विकल्प के काल में शुरू हुआ, जब स्वरूप प्रतिभास आया तो जितना महिमावन स्वरूप था उतना प्रतिभास आया, तो उतनी महिमा उसको ज्ञान में आई, ज्ञान में आई तो ज्ञान का परिणमन तो हुआ। अब वो महिमा बढ़कर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित तो हो जाएगी अल्पकाल में, किसी को अंतर्मूर्त में हो जाती है, तो उस वक्त विकल्प था, अगर वो राग की पर्याय होती तो वो बढ़ जाता। अगर वो महिमा राग की पर्याय होती तो महिमा तो बढ़ी, स्वरूप की महिमा बढ़ी, अगर वो राग की पर्याय होती तो राग बढ़ना चाहिए था, इसके बजाय तो राग का तो अनाश हो गया, तो अभाव हो गया उसका, इसलिए वो महिमा है वो राग के पर्याय नहीं है, ऐसी बात है, वो ज्ञान के पर्याय है, ज्ञान के साथ श्रद्धा और चारित्र दोनों फिर जुड़ते हैं, उसमें ही जुड़ते हैं। भावार्थ, यहां व्यवहार का तो त्याग कराया है आचार्य महाराज ने, समय सार में यहाँ व्यवहार का त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना योग्य है। व्यवहार को छोड़ करके अपने स्वरूप में लीन होना यही योग्य है, स्वरूप स्थिति में आना योग्य है, स्वरूप में से बाहर निकलना योग्य नहीं है। 173 है ना, पर कौन सा अधिकार है समय सार में, ये तो चलता है निर्जरा चलता है, फिर बंद आएगा, बंद अधिकार का है, बंद अधिकार का है, बंद अधिकार है, तो सही कुत्र गाथे के बाद में तथा षटपाहुड़ में कहा है, दूसरा आधार लेते हैं, जो सुत्तो व्यवहारो सो जगे सकज्जम्मी, जो जगती व्यवहारे सो सुतो अपने कज्जे, जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है, तथा जो व्यवहार में जागता है वो अपने कार्य में सोता है। अपने स्वरूप में जागृत हो जा तो आनंद मिलेगा, पर स्वरूप में जागृत नहीं होगा तो दुख और क्लेश मिलेगा, आनंद खोएगा। जो जागत है वो सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। गायक नहीं मीरा ने, उठ जाग मिसा मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब क्यों सोता है, ये तो अनिमति भी उतना तो लेते हैं, भगवान की वाणी में से सब लिया है। गीता में ऐसा एक श्लोक आता है, भगवत गीता में, यस्यं जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है, यस्यं जागर्ति भूतानि, जहाँ भूतानि मैंने संसार के लोग जहाँ जागृत होते हैं, सा निशा, वो निशा है, रात्रि है, वो मुनि के लिए रात्रि है। जो व्यवहार में सोता है, सोता है मतलब जो व्यवहार की उपेक्षा करता है उसमें उसकी कोई जागृति नहीं है, सोता है मतलब जागृत नहीं है, तो जागृत नहीं है मतलब सावधानी नहीं है। तो मुनिराज को व्यवहार की सावधानी नहीं होगी तो फिर मुनिराज जो पंच महाव्रत है वो निरतिचार कैसे पालन करते होंगे। समिति में तो ऐसा कहते हैं, पांच समिति है, यत्ना से चलते हैं। इरिया समिति में यत्ना से चलते हैं, बोलते हैं तो यत्ना से बोलते हैं, आदान निक्षेप करते हैं तो यत्ना से करते हैं। वो यत्ना कैसी, ऊपर ऊपर का उपयोग वाली। आत्मा में जितनी जागृति है उतनी व्यवहार में जागृति मुनिराज की होती नहीं है, फिर भी निरतिचार पालन होता है ऊपर ऊपर के उपयोग से भी। उपयोग यानी सावधानी तो स्वरूप में ही है, उतनी सावधानी राग में और बाह्य पराश्रित परिणाम में नहीं होती है। जो व्यवहार में सोता है मतलब बेसावधान है, सावधान नहीं है वो योगी। अपने कार्य में जागता है मतलब पूरा सावधान है। अपने स्वरूप की सावधानी अत्यंत अत्यंत होने से बाहर का उपयोग भी उतना लिमिटेड हो जाता है कि उसमें अतिचार होता नहीं, तो स्वयं ही इतना कंट्रोल में रहता है। स्वरूप का खिंचाव और सावधानी इतनी जोर और बलवान से होते हैं, बलवान रूप से होती है कि बाहर का उपयोग गुण स्थान अनुसार अपने लिमिट में ही चलता है, लिमिट के बाहर जाता नहीं है। बाहर उपयोग गया वो भी सम्यक ज्ञान रूप गाया गया, तो सम्यक ज्ञान में एक कंट्रोलिंग वाल होता है। क्या जिसको सम्यक ज्ञान का परिणाम होता है उसका पता चल जाता है कि हमारे ज्ञान में एक कंट्रोलिंग वाल है, वो बाहर जाने को कंट्रोल कर लेता है उपयोग को और राग को, वो अपनी मर्यादा में ही बाहर जाता है। थोड़ा अंदर आएंगे, तो स्वतः ही बिना जागृति ही वो कंट्रोल में परिणाम रहते हैं। हाँ, सहज ही मर्यादा में रहता है, सहज ही वो अपनी गुणस्थान की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता हुआ ही चलता है। उसमें जागृत होना जरूरी, सावधान होना जरूरी है ही नहीं, सहज होता है बिना परिश्रम। क्या
बिना परिश्रम,
इसके लिए कोई सावधानी और परिश्रम करना पड़ता नहीं है। जबकि मिथ्या दृष्टि को बाहर का सावधानी में बोझा उठाना पड़ता है, मैं उतना ख्याल में रखूं, उतना ध्यान से उतने प्रयत्न से चलूं कि कहीं मुझे अतिचार लग जाए नहीं, तो उसको बोझा उठाना पड़ता है। जबकि धर्मात्मा को बोझा उठाना पड़ता नहीं है, व्यवहार का बोझा उठाते नहीं, उठाना पड़ता ही नहीं उसको। तथा जो व्यवहार में जागता है मिथ्या दृष्टि, कुछ भी पंचमावृत समिति गुप्ति का व्यवहार में जागृत होकर के करता है, वो अपने कार्य में सोता है, वो अपने कार्य में सोता है, वो सो जाता है अपने कार्य में, उसको कोई पता ही नहीं है कि अपना कार्य कैसे करना है। अंधेरे में खड़ा है और बाहर में बराबर सावधानी रखेगा। इसलिए व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नहीं का श्रद्धान करना योग्य है। ये टोटल लगाया, ये श्रद्धान तो व्यवहार नहीं का विषयभूत जो अपना परमात्मा है वही एकमात्र श्रद्धा का विषय हो सकता है, दूसरा कोई श्रद्धा का विषय हो ही सकता नहीं है। व्यवहार तो व्यवहार के स्थान में जानने का विषय है, श्रद्धान का विषय नहीं है। हाँ, वो तो अपने अपने स्थान में ज्ञान करना, वहां श्रद्धा मैंने ज्ञान करना, तो व्यवहार व्यवहार के साथ स्थान में जान लेना है, निश्चय को निश्चय के स्थान में जान लेना है और ऐसा रहता है ऐसा मानना, इस गुणस्थान में ऐसा व्यवहार होता है ऐसा मानना, आगे पीछे नहीं मानना। लेकिन यहाँ श्रद्धा में ने आदर करना, आदर और निषेध, आदर और निषेध, उस दृष्टिकोण से यहाँ श्रद्धान करने की बात होती है। दोनों जगह बात श्रद्धान की है लेकिन अपेक्षा अलग अलग है, एक अपेक्षा नहीं है, अलग अलग अपेक्षा है। ये तो शास्त्र में, इसलिए तो सत्संग में सब स्पष्टीकरण होता है, वरना अकेला अकेला माने तो क्या कैसे तोड़ काटेगा। यहाँ भी व्यवहार निश्चय दोनों का श्रद्धान किया, अभी अपने उसके अपने वचन को काटते हैं क्या, पुरवार पर विरोध वचन चलता है क्या कि नहीं चलता है, अलग दृष्टिकोण है। वहाँ पहले व्यवहार और निश्चय का श्रद्धान करना, इसका मतलब दोनों को अपने अपने स्थान में जान करके मान्य करना, वे ऐसा होता है वो ऐसा होता है। यहाँ करना तो यहाँ तो निश्चय का व्यवहार का श्रद्धान नहीं करना, मतलब उसका निषेध करना चाहिए। तो वहाँ श्रद्धान करने में क्या है कि व्यवहार को व्यवहार के स्थान में जान करके निषेध करना और निश्चय को निश्चय के स्थान में करके आदर करना, उसी कारण हम दोनों का श्रद्धान है। ऐसी बात है, और वहाँ एक ही पड़खा लिया कि आदर एक का ही करना है, तो उसका अनादर करना उसका श्रद्धान छोड़ देना, ऐसा बोल दिया। तो बात तो दोनों जगह एक ही किया है, दो बात किया
नहीं है,
ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है। व्यवहार में स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार में क्या करता है कि स्वद्रव्य और परद्रव्य में आरोप कर देता है आपस में, या उनके पर्याय है उसमें आरोपित कर देता है, या उसका कारण कार्य निमित्त निमित्त संबंध दे करके एक दूसरे में आरोपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, उसको सच्चा मान लेने तो मिथ्यात्व, जैसे घी के घड़े को मान लिया कि घड़ा घी का होता है तो वो मिथ्यात्व हो गया, ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं है, इसलिए उसका त्याग करना, ऐसा श्रद्धान का त्याग करना। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य कहते हैं, उनके परिणाम को उनके परिणाम कहते हैं, उनके अपने ही अपने में ही कारण कार्य कहते हैं, दूसरे में कहते हैं
नहीं।
किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, वो सच्चा श्रद्धान है, और सच्चा श्रद्धान सम्यक्त्व का कारण होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नियों का ग्रहण करना कहा है, हाँ जिन मार्ग में तो दोनों नियों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे है? ये महत्वपूर्ण बात प्रश्न उठाया है। उपदेश में तो दोनों नय की बात आई, तो दोनों नय का ग्रहण करना ऐसा हम समझते हैं कि नहीं, ऐसी बात आई नहीं है, तुम्हारे समझ में फर्क हो गया है, ऐसी बात है ही नहीं। समाधान, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय ने की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना। जहां जहां निश्चय ने की मुख्यता का व्याख्यान यानी निरूपण हो, वहां उसको तो बराबर ऐसे ही जानना, किसकी मुख्यता करने योग्य है आदरने योग्य है वो बराबर है ऐसा ही है। तथा कहीं व्यवहार ने की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है ही नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना, पहले जानना कि उपचरित कथन है। वास्तव में व्यवहार की प्रशंसा किया है तो निश्चय को प्रशंसा करने के लिए किया है, कभी ज़्यादा प्रशंसा करने से ऐसा प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कोई बहुत श्रीमंत हो, बहुत पैसे वाला, बहुत संपत्ति उसकी, उतनी संपत्ति हो कि उनको ही पता नहीं हो कि मेरी संपत्ति कितनी है। आजकल वो आगा खान के लिए बोला जाता है, उनकी संपत्ति कितनी है कि सारे विश्व में उसकी संपत्ति है, हर देश में उनके अनुयायी लोग हैं, वहाँ उनको बनाते हैं और समर्पण कर देते हैं, तो उनकी संपत्ति में गिना जाता है। और उतने उसकी संपत्ति में से उतने कारोबार चलते हैं और उतने करोड़ों की रोजाना इन आवक होती है, आमदनी होती है, रोजाना करोड़ों की आमदनी होती है, तो कितनी संपत्ति बढ़ गई, कितनी हो गई, उसको खुद को पता नहीं है। तो बताने के लिए क्या बोलता है कि इनका जो असिस्टेंट है ना वो अरबपति है क्या, इनका जो पर्सनल असिस्टेंट है, उसका जो मंत्री है, सेक्रेटरी है, वो अरबपति हो गया है, तो उसके पास क्या होगा, उसका धनी के पास कितना होगा, ऐसा बताना पड़ता है। ऐसा व्यवहार की प्रशंसा इसलिए भी कभी करना पड़ता है कि निश्चय को अधिक तौर से बताने के लिए उसके साथ रहने वाली जो पर्याय है उसका भी प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब वो नहीं है कि उसके वो प्रशंसा करने लायक है, ऐसी बात उसमें नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। राग को, साधक को भी राग होता है और मिथ्या दृष्टि को भी राग होता है। जैसे दो भक्ति करते हैं जिन मंदिर में, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं और ज्ञानी भी करते हैं, दोनों के राग के परिणाम और प्रवृत्ति दिखती है। लेकिन ज्ञानी के राग की जात अलग है और अज्ञानी के राग की जात अलग होती है, दोनों की जात एक नहीं है। तो जात अलग दिखाने के लिए भी कभी प्रशंसा करते हैं कि देखो कैसा राग है उनका, कि इतना राग होते हुए भी एकत्व नहीं करते हैं, इतना राग जोर से आता है फिर भी उसमें एकत्व होता नहीं है, वहां भी भिन्नता रहती है, ऐसी बात है। तो दिखाने के लिए कई तरीका होता है, कई प्रकार निरूपण का होता है। इसलिए कहीं व्यवहार की मुख्यता के लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है ही नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ये तो साथ में जो कोई है निश्चय उसका उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, इस प्रकार से जानने का नाम दोनों नयों का ग्रहण है। दूसरे प्रकार से जानना, उसको भी आदर करे, उसको भी आदर करे, उसका नाम व्यवहार नहीं है, उसका ग्रहण नहीं है, उसने का ग्रहण नहीं है। व्यवहार त्यागने योग्य है, उसका नाम उसका ग्रहण है। देखो मैंने सही समझ है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसा भी है और ऐसा भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। ये स्पष्टीकरण, इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण गुरुदेव बार बार देते थे अपने प्रवचन में कि देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, दोनों नयों का ग्रहण अर्थ का अर्थ क्या निकाला है कि दोनों को समान गिनना, वो दोनों का नयों का ग्रहण है ही नहीं, एक सत्यार्थ है एक आरोपित है, ऐसा नहीं है, एक आदरणीय है एक अनादरणीय है, ऐसा ऐसा जानना वही दोनों का ग्रहण है। वो बात बार बार खुला उसका स्पष्टीकरण देते थे। तो ये भूल होती है, ऐसे भूल नहीं होवे, इसके लिए वो उभयाभाषी का या उभयाभाषी को ये भूल होती है तो उसको आदर कर लेता है, मैं तो दोनों नहीं का ग्रहण करता हूँ, मैंने एक भी छोड़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक।